श्री कृष्ण बलराम मंदिर के भाग्यशाली भक्तों ब्रह्मचारियों, भक्ति शास्त्री के अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता के पांचवें अध्याय, जिसमें भगवान श्री कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने का वर्णन है, उसमें हम तीसरे विभाग में जहाँ कर्ता कौन है इसका ज्ञान, इसके ऊपर कल चर्चा हुई थी। आप में से कोई एक व्यक्ति संक्षेप में ये समझाएगा कि कर्ता कौन है और कितने कर्ता है, कर्ता कौन है, कर्ता कितने हैं, कोई आप में से, कल हमने चर्चा की थी, कोई इसको यहाँ एक कुर्सी रख के बैठ के दो मिनट में बताओ। हरे कृष्ण, ये मुख्य आपका प्रश्न भी है, ये प्रश्न में भी है। तो कर्ता की परिभाषा सबको समझाओ थोड़ा सा। हरे कृष्ण, क्या नाम? परमात्मा। तो कितने कर्ता हैं? तीन कर्ता हैं। तीन कर्ता है, कौन कौन से हैं नाम बोलिए। जीव कर्ता है, प्रकृति है, परमात्मा है। तो प्रकृति क्या करती है? उपकरण देती है। उपकरण का मतलब काम करने का सामान सामग्री देती है। प्रकृति उपकरण देती है। परमात्मा क्या करते हैं? अनुमति देते हैं। और जीव इच्छा करता है। तो जो इच्छा करता है उसी के ऊपर सारा दायित्व है। इच्छा करता है उसके ऊपर सब दायित्व है। प्रभुपाद एक सदा आया, बहुत हमें सदा के लिए एक बात कहते थे, अनादि काल से भगवान जीवों की इच्छा पूरी करते आ रहे। तो ऐसा जब इच्छा की जीवों की बात आती है अनादि काल से, तो कोई श्लोक एक याद आता है आपको? प्रायः प्रभुपाद जी कहते हैं, कई जगह आपको भगवद गीता में मिलेगा, नित्यो नित्यानाम चेतश्चेतनानाम एको बहुनाम विदधाति कामान। इसमें कामान का अर्थ क्या है? इच्छा। कामा कामना का अर्थ है इच्छा। तो जीव अनादि काल से इच्छा करता रहा है, भगवान उनकी इच्छा। तो जीव इच्छा करता है, इच्छाएं कैसे उत्पन्न होती है, इच्छा का मतलब कामनाएं कैसे उत्पन्न होती है? स्वभाव से, स्वभाव प्रकृति के तीनों गुणों के स्वभाव से। और इच्छाओं का मूल कारण क्या है? अज्ञान, अविद्या। तो ये जब इच्छा लिखो जीव की, तो ये दो तीन बातें और भी लिखोगे तो इसका अर्थ होगा कि आप समझते हो। जीव इच्छा करता है, उसका स्वभाव उससे ये कराता है, और ये इच्छाएं और स्वभाव जो अविद्या के कारण है, क्योंकि ये प्रकृति के तीन गुणों से बनता है। अब प्रश्न उठता है कि जीव अगर नहीं करता है, स्वभाव कराता है, तो क्या परमात्मा करता है क्या? ये प्रश्न उठता है। तो ये 15वां श्लोक हमने कल पढ़ा था। 15वें श्लोक में नादते कश्चित पापम, न चैव सुकृतिम विभो, अज्ञेना अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मोहयन्ति जन्तवः। नादते कश्चित पापम, किसी को भगवान पाप के लिए का पाप नहीं कराता, नहीं किसी के पुण्य में भगवान का कुछ लेना देना है। परमात्मा पाप पुण्य दोनों को, जीव के पाप पुण्य से परे है, भले जीव के शरीर में बैठा है, लेकिन पाप पुण्य परमात्मा का कुछ लेना देना नहीं है। तो कौन करता है, कैसे करता है? बोला जीव का ज्ञान अज्ञान से ढक गया है, जीव का ज्ञान अज्ञान से ढक गया है, और उससे ये विमोहित होकर केवल इंद्रिय तृप्ति के पशु कार्यों में लगा हुआ है। ये श्लोक का भाव समझ में आ रहा है? अब बलदेव विद्याभूषण कहते हैं शुद्ध जीव अगर नहीं करता है, कर्म नहीं करता है, जीव इच्छा करता है कर्म नहीं करता है, तो फिर परमात्मा उसको जबरदस्ती पाप पुण्य कराता है क्या? क्योंकि श्रुति में भी लिखा है भगवान जीवों को पुण्य कर्मों में लगाता है, जिनको स्वर्ग में ले जाना है, और पाप कर्म में लगाना जिसको नरक में डालना है, ऐसे श्रुति ने लिखा है, प्रभुपाद ने लिखा है कौशिकी उपनिषद में, प्रभुपाद के तात्पर्य में है ये। तो क्या परमात्मा कराता है? और महाभारत में भी लिखा है अज्ञानी जीव बिल्कुल निर्बल है, कोई उसकी अपनी शक्ति नहीं है, कि सुख दुख उसके बस में नहीं है, भगवान उसको नरक या स्वर्ग में भेजता है, ये महाभारत में भी लिखा है। तो इसका अर्थ है कि जीव को क्या भगवान ऐसी स्थिति में डालते हैं, ये प्रश्न उठता है। तो ये श्लोक इसका उत्तर देता है, नहीं, क्योंकि श्लोक ये दो हैं कि जीव नहीं करता है तो परमात्मा कराता है, ऐसे लिखा है शास्त्रों में। तो भगवान इस श्लोक में कहते हैं नहीं, क्यों? कि जो विभू है, जो महान है, प्रभुपाद का तात्पर्य विभू से शुरू होता है, कि विभू महान को कहते हैं जो षडगुण संपन्न है, और छह गुणों का नाम लिखा है वह, हम पढ़ेंगे प्रभुपाद जी का तात्पर्य। जो विभू है उसके पास अनंत ज्ञान है, अनंत शक्तियां हैं, और आनंदमय है, उसको किसी के दुख सुख से क्या लेना है? तो जीव को कैसे लगाता है सुख दुख में, स्वर्ग नरक में कैसे भेजता है? बोला जीव के अपने संस्कारों के आधार पे। संस्कार जो जीव का है, कैसे बनता है संस्कार? कर्मों से, कर्मों से बने हुए संस्कार जीव के अनादिकाल से, कब से शुरू है? बोला अनादिकाल से। भगवद गीता के पांच विषय में एक विषय क्या है? और कर्म है अनादिकाल से, लेकिन परंतु ये नित्य नहीं है, इसको बदला जा सकता है। तो जीव अनादिकाल से कर्म के संस्कारों से पाप पुण्य का भागी होता है। संस्कार कहाँ रहते हैं कोई कहे तो? फिर वो सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, मन में रहते हैं, संस्कारों की स्वभाव का जगह कहाँ है? संस्कारों से स्वभाव बनता है। तो अब ये है कि भगवान नहीं कराता है, जीव के अनादि काल से कर्मों के संस्कार की श्रृंखला जो चलती आ रही है वो उससे पाप पुण्य कराता है और स्वर्ग और नर्क का भोग उसको प्राप्त कराता है। ठीक है, सीधा है ना? भगवान का इसका कुछ लेना देना नहीं है। एक श्लोक लिखा है, उसका प्रभुपाद जी ने भी भाव लिखा है, तात्पर्य में मैं पढ़ रहा हूं, बलदेव विद्याभूषण का भाव। ये श्लोक है विष्णु पुराण में, उसका अर्थ है कि फूल की सुगंध निकट में बैठे हुए को आती है। फूल को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, फूल से कुछ लेना देना नहीं है। तो प्रश्न यह है कि भगवान को कैसे पता लगता है कि जीव का क्या कर्म है, क्या संस्कार है, कहाँ डालना है उसको, कौन सी जूनी में डालना है। बोला पास में परमात्मा बैठा हुआ है, वो सूंघ लेता है, जैसे पुष्प को इधर पड़ा है खुशबू, पास से आदमी गुजर जाए तो उसकी खुशबू को सूंघे। क्या लिखा है? यथा सनिधि मात्रेण, सनिधि मात्रेण का मतलब निकटता, पास में कोई हो, गंध शोभाय जायते, पास में से कोई गुजर जाए तो उसका सुगंध भी आएगा और दुर्गंध भी आएगा, जैसा उसमें होगा वो आएगा, केवल पास से गुजरे, सानिधि मात्रे न, और क्षोभाय गंध। मनसो न उपकृता तथासु परमेश्वर, ऐसे परमेश्वर पास में बैठा हुआ है। सनिधात यथा आकाश, ये पूरा श्लोक है, इसका भाव प्रभुपाद जी ने दिया है कि जैसे सुगंध मन में पास में बैठने से आ जाती है, उसी प्रकार भगवान जो जीव के पास में बैठा है उसको जीव के भावनाओं का संस्कारों का पता लगता है। एक उदाहरण लिखा है कि आकाश और समय, पेड़, पेड़ जो बनता है ना, एक तो ऊपर जगह होगी तब ऊपर जाएगा, तो आकाश चाहिए ना, खाली जगह चाहिए, और पेड़ के लिए समय चाहिए तब बड़ा होगा। जैसे पेड़ आकाश और समय के साथ बड़ा होता है, ऐसे जीव के संस्कार जो हैं वो ऐसे ऐसे भगवान ये सृष्टि करता है जिसमें जीवों के संस्कार होते हैं, उनको अलग अलग शरीर मिलता है, परंतु भगवान उससे परे होता है। भाई पेड़ से संस्कार का, पेड़ से आकाश का कुछ लेना तो नहीं है, समय का कुछ लेना नहीं है, लेकिन आकाश होगा तब पेड़ बनेगा ना, जगह होगी तब पेड़ पे उगेगा ना, नहीं होगी तो कहां से उगेगा। आकाश का मतलब जगह है। तो ये श्लोक में तो बहुत बातें हैं, प्रभुपाद ने एक ही बात को लिया है। कौन सी बात को लिया है? सुगंध निकट में होने से आती है, ऐसे भगवान जीव के भाव को जान जाते हैं। इसका अर्थ है भगवान निरपेक्ष है, किसी के पक्ष में नहीं है, भगवान किसी के पक्ष में नहीं है, जिसका जैसा पाप पुण्य वैसा फल देते हैं। फिर भगवान सृष्टि क्यों करते हैं? सो कामया कामयता, भगवान की इच्छा होती है तब सृष्टि करते हैं, ये बृहदारण्यक के उपनिषद का श्लोक है। तो फिर जीव को क्यों कहते हैं कि आपने पाप पुण्य किया, सृष्टि तो भगवान ने की है? ये इस श्लोक के दूसरे भाग में इसका उत्तर दिया गया है। क्या दिया गया है दूसरे भाग में उत्तर? अज्ञान से ज्ञान ढक गया है इसलिए वो ऐसे कार्य करता है। बोला ये अज्ञान कब से है? बोला अनादि काल से, ये अनादि काल से। क्या लिखा है? भगवान नहीं, अज्ञानी लोग हैं, मूर्ख नहीं, मूर्ख लोग हैं, विद्वान नहीं, जो कहते हैं कि भगवान पाप पुण्य कराता है। ये जो मूर्ख लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, वो कहते हैं पाप पुण्य भगवान कराता है, दुख सुख भगवान देता है, लेकिन जो विद्वान है वो ऐसे नहीं कहते। और वेदांत सूत्र में ये कहा है, ये भी हमारे तात्पर्य में है, विस्मय नैर ग्रहण्य न सापेक्षत्वात् यथा ही दर्शति। भगवान किसी का पक्षपात नहीं लेते हैं, वो सबके साथ समान है। तो वेदांत सूत्र में ये सब लिखा है। अब श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। कौन सा श्लोक पढ़ रहे हैं? ठीक है, प्रभुपाद जी पहले तात्पर्य करते हैं विभू का। विभू का मतलब महान, जिसके अंदर क्या है, अनंत ज्ञान है, षड्गुण, जो छह गुण लिखे हुए हैं, जो भगवान के षड्गुण है वो लिखे हुए हैं। और ये लिखने के बाद प्रभुपाद जी विभू की परिभाषा में एक और बात लिखे हैं, लिख रहे हैं, वो क्या है, सदैव संतुष्ट है। भगवान सदैव संतुष्ट है, इसके लिए संस्कृत में शब्द क्या है, आत्माराम, आपत्काम। आत्माराम अपने आप में रमण करता है, आपत्काम है, कोई इच्छा नहीं है, आपत्काम आत्माराम। तो जब भगवान अपने आप में संतुष्ट है तो फिर वो जीव के पाप पुण्य से प्रभावित नहीं होता। तो पाप पुण्य भगवान को लगते ही नहीं है, इसका अर्थ ये है, पाप पुण्य का भगवान से कुछ लेना देना नहीं है। लाइन क्या लिखी है ये ले लो, माइक्रोफोन लेके पढ़ के पढ़ो तो पता लगे सबको। भगवान सर्वदा संतुष्ट है, क्या लिखा है,
वह सदैव आत्मस्थित और पापों से अविचलित रहता है।
पापों से
अविचलित रहता है, अविचलित,
अविचलित रहते हैं। आवाज थोड़ा इको हो रहा है। भगवान सदा संतुष्ट है, पाप पुण्य से विचलित नहीं होते। अब दूसरी लाइन है, अब क्या लिखना जा रहे हैं प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी लिखने जा रहे हैं कि किसी भी जीव के लिए भगवान ऐसी परिस्थिति नहीं बनाते हैं कि वो दुख भोगे या सुख भोगे, ये भगवान नहीं करते, ये पहली लाइन है। तो फिर कौन करता है, प्रभुपाद जी लिखते हैं वो अज्ञानता के कारण। फिर जो शब्द लिखा है वो सबसे महत्वपूर्ण है, नहीं एक शब्द लिखा है, अज्ञानता के कारण इच्छा करता है और इस कारण वो उस परिस्थिति में डाला जाता है, फिर कर्म की श्रृंखला चालू हो जाती है। अब ये लाइन आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये श्लोक का सारभूत है। क्या लिखा है,
अविद्य जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है।
इससे पहले की लाइन क्या है, वो सबसे महत्वपूर्ण है,
अविद्य जीव
नहीं, भगवान किसी जीव के लिए कोई विशेष परिस्थिति नहीं पैदा करता, ये मुख्य बात है। भगवान नहीं करता है, जीव अपनी परिस्थिति स्वयं स्थापित करता है। कैसे करता है, अज्ञान के कारण करता है। क्या करता है, इच्छा करता है, उससे होता है कर्म और उसका फिरता है फल और ये श्रृंखला चलती रहती है। ये बात समझ में आई, न दते कश्चित पापम न चैव सुकृतेन विभु, इतना इतने चीज का परिभाषा हो चुकी और परिभाषा हो चुकी अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, वो प्रभुपाद ने लिख दिया श्लोक के शब्द यहां तक आ गए ना। अब प्रभुपाद लिखते हैं, अब प्रभुपाद जी जीव के वास्तविक स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। जीव पराशक्ति है और पूर्ण ज्ञान है उसके अंदर, ठीक है। जीव अपनी शुद्ध अवस्था में पराशक्ति होने के नाते सच्चिदानंद है, परा का मतलब सच्चिदानंद है, तो उसमें चित्त का मतलब ज्ञान है, परंतु अज्ञानता का प्रभाव उसके ऊपर पड़ सकता है क्योंकि शक्ति सीमित है। इसके बाद प्रभुपाद इसके बाद जो तात्पर्य है इसमें तुलना कर रहे हैं विभू जीव की और भगवान की। इसके पा इसके उपरांत आपके तात्पर्य में जीव की और भगवान की तुलना है। भगवान को विभू कहा गया और जीव क्या है? अणु है। अणु का मतलब छोटा, विभू का मतलब बड़ा। तो भगवान के ऊपर तो अज्ञान का प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि बड़े हैं, जीव छोटा है इसलिए अज्ञान का प्रभाव उसके ऊपर पड़ जाता है। तो प्रभुपाद जी उसके उपरांत लिख रहे हैं जीव में और भगवान में अंतर। पहला क्या है? भगवान सर्वशक्तिमान है और जीव सर्वशक्तिमान नहीं है। दूसरा, भगवान विभू है और जीव अणु है। अब प्रभुपाद जी एक बात करते हैं, क्योंकि जीव आत्मा, बस ये खास बात है, को जो छोटी सी स्वतंत्रता है इच्छा करने की, वो ही इच्छा भगवान उसकी जो सर्वशक्तिमान है उसकी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। ये आप देखिए, पढ़िए ये इतनी लाइन पढ़िए।
जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, लेकिन ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान श्री भगवान द्वारा ही की जाती है।
एक शब्द है वो पता आपने पढ़ा नहीं, उसको थोड़ी स्वतंत्रता है इच्छा करने की, हिज फ्री विल है।
जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है,
कैपेसिटी टू डिजायर बाय हिज फ्री विल नहीं है। ये जो फ्री विल है, बाय हिज फ्री विल, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इच्छा करने की शक्ति किसने दी? भगवान ने दी। क्या दिया? थोड़ी स्वतंत्रता दी। बोला स्वतंत्रता नहीं देगा तो प्रेम नहीं हो सकता, डंडा उठा के थोड़ी कहेंगे मुझसे प्रेम करो, तो स्वतंत्रता होनी चाहिए ना। जो जीव की स्वतंत्रता है उसके कारण उसको इच्छा करने की का सामर्थ्य है और वो इच्छा करता है और भगवान उसकी इच्छा पूरी करते हैं, क्योंकि भगवान क्या है? सर्व शक्तिमान है। अब वही श्लोक पुनः एकदम याद आना चाहिए, कौन सा? नित्यो नित्यानाम चेतस चेतनानाम एको बहुनाम विदधाति कामान। ये श्लोक यहाँ इसलिए बिठाना चाहिए कि अनंत जीव इच्छाएं करते हैं, भगवान उनकी इच्छाएं अनादिकाल से पूरी करता आ रहा है, क्योंकि भगवान अनंत है, अनंत शक्तिशाली है, जीव सीमित है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं आगे, इच्छा पूरी करने देते हैं भगवान इस, ये क्या है? ये अनुमति है, ये है अनुमति। भगवान उसकी इच्छा पूरी करने के लिए अनुमति देते हैं, ये है अनुमति की परिभाषा। हाँ, और जब ये अनुमति की परिभाषा है तब आपको कहे कहाँ से बोल रहे हो भगवान, अनुमति कहाँ कैसे होगी? अच्छा, तो शास्त्र का श्लोक 13वें अध्याय से पढ़ेंगे, परमात्मा का कार्य क्या है? अनुमंता उपदृष्टा भर्ता भोक्ता महेश्वर। अनुमंता वहाँ शब्द आपको लेके लिखना चाहिए, क्योंकि भगवान अनुमति देता है, ठीक है। अनुमति का बात समझ में आया कि श्लोक है, ये श्लोक बोलोगे तो आपकी बात प्रमाणिक होगी। और फिर लिखा है परंतु भगवान अनुमति देते हैं, परंतु उस जीव के कर्म के फल के दायित्व भगवान के ऊपर नहीं है। वो जो इसने इच्छा की है वही उसका जिम्मेवार है, भगवान जिम्मेवार नहीं, ठीक है ना। अब प्रभुपाद जी सरल बात लिख रहे हैं, इस सरल बात को समझ लीजिए कि जीव अज्ञान के कारण शरीर को मैं मान लेता है, इसलिए दुख सुख भोगता है। अब प्रभुपाद जी आगे बढ़ के हमको बता रहे हैं कि केवल जीव नहीं है शरीर में, परमात्मा भी जीव के साथ सदा ही रहते हैं, और ये है फूल वाली कथा। आया ना वो श्लोक जो बताया था, देखो क्या, वो जीव के साथ रहते हैं, उनके निकट हैं, इसलिए जीव के भावों को भांप लेते हैं, जान जाते हैं। कैसे भगवान को पता लगा कि जीव ने ये इच्छा किया? बोला भगवान पास में बैठे हैं परमात्मा के रूप में, जीव के भाव को भाव ले दें। और ये श्लोक है श्रुति का और विष्णु पुराण का श्लोक है, ये श्लोक विष्णु पुराण में है जो अभी पढ़ा था हमने, हाँ फूल वाला जो है उसमें दो चार चीजें और भी हैं, ये बलदेव विद्याभूषण। तो वो बात प्रभुपाद जी लिखते हैं कि परमात्मा को पता कैसे लगा कि उसको संरक्षण करें, क्योंकि पास में बैठे हैं, पता लग गया। अभी इसको कोई पास में बैठा हुआ बहुत अच्छा सेंट लगा के आया, पता लग जाता है ना, और भगवान न करे को पास में बैठा हुआ कुछ और गड़बड़ करे तो भी पता लगता है ना। वो छोटा बच्चा होता है तो कोई कहता है इसने कुछ किया है, हटाओ, आप दूर भी नहीं हो, पता लग जाता है क्या किया है, समझ रहे हैं ना। तो दुर्गंध और सुगंध दोनों पास में बैठने से पता लग जाता है, तो ऐसे भगवान को पता लगता है कि जीव की क्या इच्छा है, ठीक है ना, ये साफ हो गई। अब प्रभुपाद जी इच्छा के लिए एक शब्द लिखते हैं और वो हमारे बंधन का कारण है। क्या शब्द लिखा है? इच्छा
जीव को बंध करने के सूक्ष्म बंधन है।
इच्छा जीव का सूक्ष्म बंधन है, इच्छा के कारण, इच्छा सूक्ष्म है जो जीव के बंधन का कारण है। बद्ध जीव क्यों है? क्योंकि इच्छा करता है। तो क्या इच्छा को खत्म कर देनी चाहिए? ये प्रश्न उठता है। तो क्या इच्छा को खत्म करना ही चाहिए? इच्छा खत्म हो सकती है? नहीं। तो इच्छा को बदलना करना चाहिए। क्या इच्छा करनी चाहिए? इच्छा क्या करनी चाहिए? भगवान की सेवा प्राप्त करने की। तो इच्छा नहीं खत्म की जाती, इच्छा का विषय बदला जाएगा, इच्छा रहेगी। तो इच्छा सूक्ष्म जीव के बंधन का कारण है, सूक्ष्म रूप से इच्छा जीव के बंधन का कारण है, ठीक है ना। और इसी प्रकार सही इच्छा जीव के मुक्ति का कारण भी हो जाएगी, क्योंकि स्वतंत्रता तो है ना जीव को। कोई कहे ऐसा उदाहरण दीजिए कि भगवान पक्षपात नहीं करते हैं, जीव को इच्छा देते, हर एक को अपनी इच्छा देते, तो वो कहते हैं आपको जो चाहिए वो मांग लो। हाँ, ये यथामाम प्रपद्यन्ते श्लोक हो गया। उदाहरण दो, मतलब कोई एक इतिहास का उदाहरण दो। अर्जुन और दुर्योधन दोनों को भगवान ने कहा देखो मैं आपके सामने हूँ, ये सेना है, मैं हूँ, अब तुमको चाहिए ले लो। तो आप पता लगता है किसकी इच्छा क्या। इससे हम आपको ये सिखाना चाह रहे हैं कि भगवान को मांगने की इच्छा होनी चाहिए या भगवान से मांगने की इच्छा होनी चाहिए, इच्छा में इतना ही अंतर है। एक है भगवान को मांगना, एक है भगवान से मांगना। भगवान से तो सभी मांग रहे हैं, जो भगवान को मांगता है वो भला मानस है, वो ही भला है, ये अंतर है। ये बात समझ में आई? इच्छा सूक्ष्म रूप से बंधन का कारण है, भगवान से मांगना बंधन का कारण है, भगवान को मांगना मुक्ति का कारण है। इच्छा तो रहेगी, और उदाहरण दुर्योधन और ये उदाहरण बहुत अच्छा समझ में आएगा सबको। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जीव सर्वशक्तिशाली नहीं है कि अपनी सब इच्छाएं पूरी कर सके, उसकी इच्छाएं केवल भगवान पूरी करते। जीव सर्व, जीव क्या नहीं है? सर्वशक्तिमान नहीं है। इसलिए भगवान सर्वशक्तिमान होने के नाते उनकी सब इच्छाएं पूरी करते हैं। अब एक लाइन लिखिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं, परंतु उसके बीच में हम हस्तक्षेप नहीं करते। भाई तुमने ऐसी इच्छा क्यों की, ऐसे नहीं पूछते। क्यों लिखा क्या है देखो, क्योंकि जीव को भगवान ने थोड़ी स्वतंत्रता दी है। इसको आप किसी को समझाएं कि कैसे समझें। बोला जे एक व्यक्ति जाके मंदिर में प्रार्थना करता है, आज रात को चोरी करने जाता हूँ, भगवान अच्छा मेरे को किसी के घर में माल मिलना चाहिए। जाता है ना, ये चोर भी तो जाते हैं ना। अब भगवान कहेगा ठीक है, ये मांगने आया है तो मैं इसके इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, जाओ। और जो मूर्ख बिल्कुल मेरे तरफ देखता ही नहीं है, उसको जाके देख लो, पकड़ लो, ले लो माल वहां से। भाई उस वो कभी आता ही नहीं है कि मेरे माल की रक्षा करो कहने के लिए, और तुम कम से कम आए तो हो गए, किसी का माल चाहिए। तो कहने का है कि क्या लिखा है यहां कि भगवान हस्तक्षेप नहीं करते हैं किसी की इच्छा में। भाई क्यों ऐसे मांगा, भगवान मना क्यों नहीं कर देते हैं? बोला नहीं करते हैं क्योंकि भगवान ने हमको स्वतंत्रता दी है, उसमें हस्तक्षेप नहीं करते, उसमें रुकावट नहीं डालते। परंतु अगर कोई भगवान को चाहे तो फिर उस इच्छा के लिए भगवान उसकी सहायता करते हैं और सब व्यवस्था करते हैं, और उस व्यवस्था से वो नित्य सदा शाश्वत सुखी रह सकता है। ठीक है, सामान्य लोगों की इच्छा में भगवान हस्तक्षेप नहीं करते हैं। पहली बात, सामान्य संसारी जीवों के इच्छा में भगवान हस्तक्षेप नहीं करते क्योंकि उसकी स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालते। परंतु जो भक्त भगवान को चाहता है उसके लिए भगवान व्यवस्था बनाते हैं, क्योंकि ये भगवान का स्वभाव है। स्वतंत्रता भी भगवान ने दी है और भक्त की सहायता करना भी भगवान ने अपना स्वभाव बनाया है। तो भक्त भगवान भक्तों की सहायता करता है, इसमें कोई दोष लगेगा भगवान को? नहीं। बोलो ये भगवान का स्वभाव है, ये भगवान में दूषण नहीं है, भूषण है। कहते भक्त वत्सलता भगवान का भूषण है। भूषण का मतलब अलंकार है, ये दूषण नहीं है भगवान। अब प्रभुपाद लिखते हैं, वेदों में लिखा है, वो कौशिक की उपनिषद की बात लिखी है कि भगवान जिसको स्वर्ग में भेजना चाहते हैं उससे पुण्य कराते हैं, नरक में भेजना चाहते हैं उसके पाप कराते हैं। कैसे कराते हैं? उसकी इच्छा के अनुसार, उसने इच्छा की है इसलिए कराते हैं। वो इसके पीछे नहीं, आगे पीछे कहीं लिखा होगा उस श्लोक में, मतलब इसमें इतना ही लिखा है, और इसके नीचे प्रभुपाद ने महाभारत में भी ऐसे ही लिखा है, वही बात कही है। महापर्व में क्या लिखा है, ये नीचे लिखा है उसके, अपने सुख दुख के लिए जीव आश्रित है, स्वतंत्र नहीं है, आश्रित है सुख दुख के लिए। भगवान उसको नरक या स्वर्ग में भेज सकते हैं। जैसे उदाहरण क्या दिया है, बादल को वायु हिला सकती है, भगवान जीवों को हिलाते। क्यों हिलाते हैं फिर पूछो, पहले सारी बात कही है उसको ध्यान में रखना, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता है और उसकी इच्छा है, उसी को भगवान पूरा करते हैं। अपनी तरफ से भगवान किसी को नरक स्वर्ग में नहीं भेजते। अब प्रभुपाद लिखते हैं, इसलिए जीव बद्ध जीव कैसी अपनी इच्छाएं दिखाए, कैसी इच्छाएं बदजीव की, नहीं एक इच्छा एक शब्द है, ये तो लिखा है कृष्ण भावना की उपेक्षा करता है, उससे दूर भागना चाहता है और इसलिए अपने आप को भ्रम में डालता है, वो ठीक है। इच्छा के लिए एक शब्द लिखा है, कैसे इच्छाएं, ये मेमोरियल इच्छा के लिए क्या शब्द लिखा है, वो तो नीचे है, वो अनादि है नहीं, यहाँ ये मेमोरियल है, टाइम उसमें टाइम इमेमोरियल होता है, हाँ बाय हिज इमेमोरियल डिजायर टू अवॉइड, वो टाइम इमेमोरियल नहीं है, ये उसमें टाइम आगे लगता है, इसमें टाइम नहीं है ना अंग्रेजी में, इमेमोरियल मेमोरियल और इमेमोरियल का मतलब ये है असभ्य, कोई कोई सभ्य और असभ्य, भाई कोई ये मेमोरियल काम किया मतलब ऐसा काम किया जिसका वो अच्छा माना जाएगा, ये इमेमोरियल काम है मतलब बेकार सा काम है, कोई इसको अच्छा नहीं, तो जीव अपनी असभ्य इच्छाएं ऐसे समझना चाहिए, भोग की इच्छाएं भगवान को पाने की इच्छाएं मेमोरियल हो गई और भगवान से दूर भागने की इच्छाएं इमेमोरियल हो गई, अब इसको ऐसे समझ लो, क्योंकि प्रभुपाद इसके बाद ये लिखता है जिसकी ऐसी भगवान से दूर भागने की दूर इच्छाएं हैं वो भ्रम में पड़ते हैं, ये इस लाइन का ये अर्थ ऐसे करें समझ में आता है कि नहीं, अब पढ़ो, मैं कह रहा हूं पहले, मैं पढ़ाऊ कह रहा हूं वो सुनो फिर पढ़ो, दोनों का अर्थ एक है कि नहीं, जो भगवान से दूर भागना चाहते हैं अपनी दुष इच्छाओं के कारण वो भ्रम में पड़ते हैं, अब पढ़ो जो लिखा है वो, नहीं 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 वो इस समझो, ये लाइन पहले समझो, इसलिए बद्ध जीव अपनी दुष इच्छाओं से भगवान कृष्ण भावना को भावना से दूर भागता है, उसके निकट नहीं जाना चाहता है और उसके कारण वो अपने को मोह में डालता है, लिखा है ना, तो इच्छा के आगे एक शब्द होना चाहिए, वो नहीं है आपके पास, अनादिकाल लिखा के जान छुड़ा दिया ना बहुत, क्यों भैया सब वैसे लिखा होता है टाइम, इसमें टाइम है ही नहीं, अनादि अनादि शब्द नहीं है इसमें, अनादि शब्द अंग्रेज में है ही नहीं, इसमें लिखा हिज इमेमोरियल डिजायर, सिर्फ इतना ही लिखा है, हाँ जी देहधारी जीव, इसलिए पहले इसलिए होना चाहिए, अब इसमें क्या है कि अनादि शब्द है नहीं श्लोक में, प्रभुपाद के तात्पर्य में अनादि शब्द नहीं है अंग्रेजी में, इमेमोरियल इच्छाएं लिखी हैं सिर्फ, तो उसको लिख सकते हैं दुष्प्रवृत्ति की इच्छाएं, भाई जो भगवान से दूर जाएगी उसकी तो उसको अच्छा तो कोई नहीं कहेगा ना, अब पहले दो शब्द समझे मेमोरियल और इमेमोरियल, जैसे भाई ये मेमोरियल है ये बड़ा जो ये प्रभुपाद मेमोरियल गेट जो है प्रभुपाद मेमोरियल है, मैंने अच्छे काम के कारण इसकी यहाँ नाम निशान रह रहा है, जैसे स्मारक मेमोरियल का एक स्मारक हो ना, एक अर्थ हो गया, ऐसे अच्छे काम करने वाले अर्जुन ने भगवान को मान लिया ये मेमोरियल इच्छा है, स्मरणीय समझ लीजिए, ऐसी जो अच्छी है जिसको अच्छा समझा जाता है, हाँ जो स्मरण और जो स्मरण को नहीं, दुष्ट जो है दुष्ट इच्छाएं अच्छी और बुरी इच्छाएं ऐसे समझे सामान्य भाषा में, भाई जो भगवान से दूर जाएगा उनकी इच्छा कैसी होगी, तुष्ट होगी, तो ये अनादि मतलब ये प्रवृत्ति इसको प्रभुपाद के भाव को समझना है। हिंदी में लिखा है ठीक है, इसको पढ़ जाएंगे समझ में नहीं आएगा। तो मोह में पड़ने का जीव के कारण क्या है, उसकी कैसी इच्छाएं, दुष्प्रेरणा वाली इच्छाएं। वो क्या है दुष्प्रेरणा, कृष्ण भावना से दूर भागता है। अवॉइड लिखा है, उपेक्षा दूसरी चीज है, अवॉइड दूसरी चीज है। अंग्रेजी में लिखा है अवॉइड करना, उपेक्षा का मतलब उसको ध्यान नहीं देना, अवॉइड करना मतलब का मतलब है उसको उससे दूर भागना। भाई एक व्यक्ति कहता मुझे इसके अच्छा नहीं लगता है, वो तो ठीक है। एक कहता कि मुझे जाना ही नहीं है, मैं आता हूं लेकिन अच्छा नहीं लगता, ये उपेक्षा हो गई। एक कहता भागो जाओ, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कृष्ण भावना। जो ऐसी इच्छा करते हैं वही उनके मोह का कारण है, ऐसे ऐसे समझ लो। अब प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, इसलिए उसका परिणाम क्या निकला, जो जीव सच्चित आनंद है और उसका जो अस्तित्व है वो छोटा है और उसके कारण उसने अपने सेवा के स्वरूप को, भगवान की सेवा के स्वरूप को भुला दिया है और इसलिए वो माया में फंस गया है, ऐसा लिखा है ना। अब ये सारा लिखने का कारण क्या, क्यों प्रभुपाद ने ये लिखा, क्योंकि वो कृष्ण भावना से दूर भागता है तो उसका ये परिणाम है। जो भागेगा कृष्ण भावना से दूर उसका परिणाम यही होगा कि वो सच्चित आनंद होते हुए भी मोह में अज्ञान में फंस जाएगा। और ऐसा अज्ञानी जीव ही कहता है कि भगवान हमारे बंधन का कारण है, दुख सुख का कारण है। ऐसा अज्ञानी जीव भगवान को अपने दुख सुख का कारण मानता है। और इसका प्रमाण प्रभुपाद जी ने वेदांत सूत्र ने लिखा है, नहीं नहीं भगवान किसी से पक्षपात नहीं करते हैं, ये श्लोक लिखा है, ठीक है, विषमय निर्गरणीय वाला श्लोक लिखा है। तो ये श्लोक हमने 15वां पढ़ा, उसमें क्या खास बात आपको समझ में आई, भगवान किसी के पाप पुण्य के, भगवान को पाप पुण्य स्वयं को लगते नहीं है, किसी के पाप पुण्य से भगवान को कुछ लेना देना नहीं, क्यों, भगवान विभू है, क्योंकि भगवान विभू है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में परिपूर्ण, पहली बात तो ही है। तो फिर दुख सुख जीव को कौन देता है, वो कौन नरक सर्क में भेजता है, कौन पाप पुण्य कराता है, जीव का ज्ञान अज्ञान से ढक गया है। तो अज्ञान क्या है जीव का, इच्छा करना, कौन सी इच्छा करना, कृष्ण भावना से दूर भागने की इच्छा करना। कृष्ण भावना से दूर क्यों भागते हैं, क्योंकि उसकी इच्छा भोग की होती है, वो इमेमोरियल है, भोग की इच्छा इमेमोरियल है, कृष्ण पाने की इच्छा मेमोरियल है। और जब वो ऐसे करेगा तो फिर माया में बंध जाएगा और अपने पाप पुण्य का स्वयं जिम्मेवार होगा। तो भगवान जीव को ऐसी इच्छा करने क्यों देते हैं, क्योंकि उसको थोड़ी स्वतंत्रता भगवान ने दी है, इसलिए जीव की इच्छा में भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक का सारांश समझ में आया, भगवान नहीं है। अब इसका अंतिम, इस श्रृंखला का अंतिम श्लोक पढ़ रहे हैं, जिसमें ये बताया जाएगा कि ये ज्ञान दूर कैसे हो, और ज्ञान दूर हो जाए तो क्या हो जाएगा। ज्ञाने न तु तदज्ञानम येषां नाशितम् आत्मनः तेषां आदित्यवज ज्ञानम प्रकाशति तत्परम्। शब्दों का अर्थ ये, ज्ञाने न तू, अगर उसको, यदि उसको ज्ञान प्राप्त हो जाए, तद अज्ञानम, तो फिर उसका अज्ञानम ये शाम नाशनम, उस ज्ञान से नाश हो जाएगा। किसका? अज्ञान किसका, ज्ञान किसका? तो उसके लिए शब्द क्या लिखा है? आत्मनः। आत्मनः का मतलब जीव का, ठीक है। तो पहली लाइन का अर्थ तो बहुत सरल है ना, जीव का अज्ञान ज्ञान से खत्म हो जाएगा। अब चौथे अध्याय में आपको याद आना चाहिए कि ज्ञान कैसे लेना मिलता है और ज्ञान का क्या लाभ है। चौथा अध्याय पढ़ा है ना आपको, ज्ञान कैसे मिलेगा? तद विधि प्रणिपाते न, ज्ञान मिलेगा गुरु से, ज्ञान मिलेगा गुरु से, ठीक है, प्रमाण इसके। और गुरु से जो ज्ञान मिलेगा उसका लाभ क्या है? इसके बाद दो श्लोक है ज्ञान के लाभ के। सारे पाप नाश हो जाएंगे, अग्नि जैसे सबको, ये सब जो दो तीन श्लोक है ना, ये है ज्ञान प्राप्त करने की प्रणाली, ठीक है, अज्ञान ना। अब क्या लिखा है? तेषाम। अब पहले ये शाम और तेषाम, ये है बहुवचन। बहुवचन समझते हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन संस्कृत है, ये बहुवचन है दोनों। इसका मतलब है कि जीव अनंत है। इसके लिए प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है ये शाम और तेषाम को लेकर भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक के तात्पर्य के भाव को। क्या है 2 का 12? ये जनाधिपा, ये राजा पहले थे अब हैं, तो वो बहुवचन है ना उधर, उस श्लोक को इन शब्दों के साथ जोड़ा है। जिस श्लोक में आपके लिए प्रश्न था कि मायावाद का खंडन कैसे है, 12वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12-13 जो भी 12 में, ये है जनाधिपा, जिसमें शब्द है जनाधिपा। जनाधिपा का मतलब जन का अधिपति, मतलब राजा, ठीक है ना। तो ये शाम तेषाम से 2 के 12 श्लोक को तात्पर्य में लिया है। ये आपको इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको मालूम पड़े क्यों प्रभुपाद ने ये क्यों लिखा है, ये शाम और तेषाम को देख के लिखा है। ये बहुवचन में है, इसका मतलब जीव अनंत है। आदित्य वज ज्ञानम, अच्छा इसका एक और अर्थ है, ये शाम तेषाम का एक और अर्थ है, देर से आता है तो कुछ लाता है, सादा पानी चल जाए। एक और ये शाम तेषाम का अर्थ है कि जीव कुछ बद्ध है और कुछ मुक्त है। तेषाम आदित्य वज ज्ञानम प्रकाशयति, जिनके लिए सूर्य के समान ज्ञान प्रकाशित हो गया उसका अज्ञान नाश हो जाएगा। ये तो जब मुक्त जीव हो गए, वो मुक्त हो जाएगा। प्रकाशति मतलब ज्ञान हो जाएगा। प्रकाश का अर्थ क्या है? ज्ञान। अंधकार का अर्थ क्या है? अज्ञान। तो प्रकाश का अर्थ क्या निकालेंगे? ज्ञान हो जाएगा। तत् परम, ये परम शब्द जो है इसके 2 अर्थ है। प्रभुपाद ने परम का अर्थ क्या लिखा है? कृष्ण भावना अमृत। इसका मतलब ये परम कार्य है। परम के 2 अर्थ लिखे। परम का अर्थ भगवान भी है, क्योंकि वो जीव से महान है, और परम का अर्थ जीवात्मा भी है, क्योंकि वो शरीर से महान है। दोनों के लिए परम शब्द बलदेव विद्याभूषण ने दोनों के लिए लिखा है परम शब्द। तो अब इस श्लोक का अनुवाद ये हुआ, जब जीव का अज्ञान ज्ञान से नाश हो जाएगा, वो ज्ञान सूर्य के समान किसको प्रकाशित करेगा? 2 चीजों को प्रकाशित करेगा। अब ये उदाहरण आपको पहले एक बार दिया था, याद है? सूरज निकलता है सुबह सवेले, तो सूरज को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं और दुनिया को देखते हैं। तो अगर ज्ञान से अज्ञान चला गया जय सूर्य के समान, तो किसको देखेंगे? नहीं, एक अपने आप को और जो वो सूर्य को। तो इस सूर्य की जगह पे भगवान को देखेंगे और अपने आप को देखेंगे, तो भगवान को भी देखेंगे और अपने आप को भी देखेंगे, फिर पूरे जगत को देखेंगे, तो उसका नाम है जगत को देखेंगे, वो है जगत। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में क्या लिखा है? ना तात्पर्य को छोड़ो, पहले अनुवाद में क्या लिखा है?
किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रवृत्त होता है जिससे अविद्या का नाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी उसमें प्रकाशित हो जाती है।
यहाँ तक ठीक है। क्या प्रकाशित होता है? प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखेंगे तो बलदेव विद्याभूषण और चक्रवर्ती पाद दोनों ने लिखा है कि आत्मा और भगवान दोनों का दर्शन हो जाएगा, परम को इसका भाव ये लिखा है, सब प्रकाशित हो जाएगा। क्या भाई? ज्ञान काहे के लिए प्राप्त करते हैं? भगवान को जानने के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए। इसलिए बलदेव विद्याभूषण कहते हैं जो आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं वो मोहित नहीं होते। ये है ज्ञान की महिमा, जिससे आत्मा का और परमात्मा की अनुभूति होती है। और ये चौथे अध्याय के 36, 38 श्लोक में कहा हुआ है। 34 में ये ज्ञान की महिमा है, 36, 37, 38 चौथे अध्याय में क्या लिखा है? ये प्रभुपाद के तात्पर्य ये शब्द हैं, यहाँ श्लोक लिखा है, सर्वज्ञान पलवे नैव, ज्ञान की नाव में बैठेंगे, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि, वो ज्ञान सारे कर्मों को नाश करेगा, न ही ज्ञान है न सदृशम। ये शब्द हैं इन श्लोकों के, ठीक है। इसके बाद प्रश्न ये पूछा, ये ज्ञान आया कहां? बोला साधु संघ से। साधु संघ से, जो साधुओं का संग करेगा उसका अज्ञान नाश करेगा, हो जाएगा। और वो ज्ञान उसको परम को प्रकाशित करेगा। वो ज्ञान उसके लिए क्या करेगा? परम को प्रकाशित करेगा, परम को। अब परम क्या है? परम के दो अर्थ लिखते हैं। परम का अर्थ है भगवान, क्योंकि वो जीव से महान है। और परम का अर्थ जीव है, क्योंकि वो शरीर से महान है। तो परम के दोनों अर्थ हो सकते हैं। ये है बलदेव विद्याभूषण का भाव। सूर्य उगता है तो अंधकार चली जाती है, और आत्मा का ज्ञान होता है। बोला कहां से? बोला प्रमाणिक गुरु की शिक्षा से, तो उसको भी सब कुछ ज्ञात हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। बहुवचन लिखा है क्योंकि जीव अनंत है, दो प्रकार के हैं, बद्ध और मुक्त। और ये जनाधि वाले श्लोक से मिलेगी। अब प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ते हैं। जिसने कृष्ण को भूला है वो निश्चित रूप से मोह में पड़ेंगे, परंतु जो कृष्ण भावना में है वो मोह से मुक्त है। ये तो सीधी सी बात है। अब भगवत गीता में कहा है, वो प्रभुपाद जी लिखा है, कौन कृष्ण भावना में है जिनको ज्ञान है? तीन श्लोक लिखे हैं पूरे के पूरे, देखो लिखे हैं कि नहीं? 36, 37, 38 लिखे हैं ना तीनों, प्रभुपाद जी ने दिए ना। अब लिखा है ये ज्ञान कहां से आएगा? प्रभुपाद जी लिखते हैं ये जो ज्ञान की इतनी महिमा, ये कहां से आएगा? कृष्ण का शरणागत लेने से, कृष्ण का पूरा शरण लेने से आएगा। अब प्रभुपाद जी को ज्ञानी की परिभाषा समझाने की जरूरत पड़ गई हमको कि ज्ञानी किसके पास होगा भाई? ज्ञान किसके पास होगा? ज्ञानी के पास। हाँ, जिसके पास ज्ञान होगा उसको क्या कहेंगे? ज्ञानी। तो ज्ञानी की, अब एक श्लोक में भगवत गीता में एक श्लोक में ज्ञान योग की परिभाषा है। इस श्लोक में, कौन से श्लोक में? 7:19 में। 7:19 में ज्ञान योग की परिभाषा एक श्लोक में है भगवत गीता में। क्या क्या श्लोक क्या है पढ़ो? बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान। एक श्लोक में कर्म योग का भगवत गीता में कहां समझाया हुआ है? ये 7 में है, वो 9 में है, 9:27 है। यत करोषि यद अश्नासि यद जहोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुष्व मदार्पणम्। ये एक श्लोक में ज्ञान। एक श्लोक में ध्यान योग की परिभाषा कौन से भगवद गीता में कहा है? एक श्लोक में, छह का लास्ट में क्या है? योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतिर अंतरात्मा श्रद्धावान यो भजते। और एक श्लोक में भक्ति की परिभाषा, सर्वधर्मान परित्यज्य मन मना मन मना भव मद भक्तो। तो ये चारों योगों की एक एक श्लोक में परिभाषा कहाँ है? तो प्रभुपाद जी यहां लिख रहे हैं ज्ञान योग की परिभाषा, क्योंकि प्रसंग क्या चल रहा है? ज्ञान, ज्ञान होगा तो अज्ञान जाएगा, तो ज्ञान कहाँ से आएगा? तब बोलते हैं भगवान का शरणागति आएगा। भगवान की शरणागति कैसे होगी? गुरु से होगी, वो आगे आएगा। परंतु ये ज्ञान आएगा तो ज्ञानी किसको कहते हैं? प्रभुपाद कहना चाहते हैं ज्ञानी कौन है? तब ये श्लोक लिखा है, ये 7:19 का तात्पर्य है, पढ़ लीजिए। 7:19 का तात्पर्य लिखा है साफ के नहीं? बहु नाम जन्म नाम अंत्य का तात्पर्य है कि नहीं? बहुत जन्मों के बाद जीव जब वासुदेव सब कुछ है और शरण लेता है तो उसको महात्मा कहते हैं, ऐसे लिखा है ना? ठीक है, अब प्रभुपाद जी ये इसका तात्पर्य ऐसा ही है, उसमें कुछ नहीं है, ये तो आप कई बार पढ़ा हुआ है। तो प्रभुपाद जी क्योंकि ये ज्ञान का प्रसंग है इसलिए ज्ञान योग के श्लोक को यहां लिखा है। अब प्रभुपाद जी लिखना चाहते हैं ये लोग मोह में पढ़ते क्यों हैं? पानी लाया तो नहीं कोई? एक गिलास वाला कहाँ गया हमारा? वो आ रहा है, बैठिए, आएगा। आ रहा है कि आरो आ रहा है? अब प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये मोह में लोग पढ़ते क्यों हैं? बहुत बहुत प्रकार से लोग मोह में पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी को ये संसार के मोह की बात नहीं कर रहे हैं। जो जो ज्ञान के रास्ते में चहे वो भी मोह में पड़ते हैं, प्रभुपाद जी उसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए क्यों, उदाहरण क्या देते हैं? बहुत से कारण से कोई मोह में पड़ सकता है। उदाहरण किसका क्या देते हैं? कोई मूर्ख अपने आप को भगवान ईश्वर मानने की मूर्खता करता है। प्रभुपाद को खंडन इसका करना था। मोह में कैसे पड़ता है? उसके तो बहुत से कारण है, घर परिवार ये सब मोह है, दुकान मकान मोह है, धन मोह है, उसको प्रभुपाद नहीं पूछ रहे। प्रभुपाद वो बात कर रहे हैं कि जो ज्ञान के लिए घर से निकला है और वो मोह में कैसे पड़ा, अपने आप को भगवान बांध के मूर्ख अपने आप को मोह में डाल दिया, ये लिखा है ना? और ये माया का अंतिम जाल है। क्या लिखा है? ये माया का क्या है? अविद्या का पास है या जाल है? बात तो एक ही है, नहीं पास कहो या जाल कहो, क्या मैं कहना चाह रहा हूं इसको? आपने कभी देखा है, लिखा है ये, देखा है एक खेल देखा है आपने, बच्चे खेलते हैं सांप सीढ़ी वाला खेल देखा है? वो 98 पे बड़ा सांप होता है ना एक, वो जब खाता है सबसे लड़ा है पूंछ पे, ये है अपने आप को भगवान मानना। ओ भगवत धाम के पास 98 में पहुंचने से भी वापस पूंछ पे साथ में आना, ये है वो वहां 98 के ऊपर सांप खाना। और अच्छे किसी भगत का संग कर ले और प्रसाद खा ले तो 5 पे खड़ा होगा तो सीढ़ी लंबी है, सीधी 80 पे, ऐसे होता है। ये सांप सीढ़ी से भक्त संग और दुख संग से क्या होता है उसका पता लगता है। अब प्रभुपाद जी इसका खंडन कर रहे हैं, ऐसे मूर्खों की बात का खंडन कैसे कर रहे हैं? अगर भगवान है तो फिर उसके ऊपर माया, तो माया भगवान से बड़ी है क्या कि उसके ऊपर माया का प्रभाव पड़ेगा? अगर माया, इसका अर्थ ये होगा कि माया भगवान से बड़ी है। बच्चे थे हम तो ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, तो पुराने कट्टरवादी थे, बोला तुमने इस अछूत को हाथ लगाया है, तुम स्नान करो। तो मैंने उसको कहा मैं ब्राह्मण हूँ। बोला हाँ। तो मैंने मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं इसको हाथ लगाऊँ तो ये पवित्र होना चाहिए कि इसके हाथ लगाने से मैं कहाँ पवित्र हो जाना चाहिए, बताइए मुझे। तो मैं ब्राह्मण नहीं हूँ तब इसको हाथ लगाने से अपवित्र होगा, स्नान करो ना। मैं तो इसको हाथ लगाया तो इसको ब्राह्मण बनना चाहिए ना, तो उल्टा क्यों नहीं होता है। नहीं, प्रभुपाद ने इतने सारे लोगों को पाश्चात्य देश में हाथ लगाया, ब्राह्मण गए, तो ये तो ब्राह्मण तो इसको कहते हैं, नाम का ब्राह्मण है, तुमने हाथ लगाया, छू लिया अभी किसी को, अछूत को, जाओ स्नान करो, तो इसका मतलब वो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ यही बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान है तो माया ने उसको कैसे घेर लिया और माया में कैसे पड़ गया, तो भगवान कैसे हो गया। तो ये खंडन कर रहे हैं प्रभुपाद जी इस बात का, ठीक है। और प्रभुपाद जी ने तीन शब्द लिखे, क्या लिखे हैं? निसेंस माया शैतान इज ग्रेटर, शैतान लिखा है, वो शैतान लिखा है ना। अब प्रभुपाद जी कहते हैं वास्तविक ज्ञान लेना है तो जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है उसके पास जाओ, और फिर लिखा है ऐसे प्रमाणिक गुरु के पास जाओ और कृष्ण भावना को उसके निर्देश में शिक्षा ग्रहण करो, ऐसी कृष्ण भावना आपके माया मोह अज्ञान को ऐसे भगाएगा जैसे सूर्य अंधकार को भगाता है। जब ये आप कहें तब कोई श्लोक आपको बोलने की जरूरत पड़े तो कौन सा बोलेंगे? कृष्ण है सूर्य समान, माया है अंधकार। ये श्लोक कहने से आपकी बात प्रमाणिक हो जाएगी, ठीक है। कोई इतना बड़े ज्ञानी हो कि मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं, परंतु फिर कहीं फंस जाता है। कहां फंस जाता है ज्ञानी? ये जान लिया मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं, लेकिन फिर गलती क्या करेगा? आत्मा और परमात्मा में उसको पता नहीं लगेगा, दोनों एक ऐसे कर देगा। इतना ऊपर उठ के आया, शरीर को छोड़ दिया, परंतु मैं आत्मा कहते कहते अरे आत्मा परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा, ऐसे करने लगेगा। प्रभुपाद कहते ये भी गलती है। परंतु अगर किसी कृष्ण भावना प्रमाणिक भक्त का संग होगा तो फिर वो ऐसी गलती नहीं करेगा। भगवान और भगवान के साथ हमारा संबंध जो है वो तब हमारा स्थापित होता है जब हम भगवान के प्रतिनिधि से मिलते हैं। हाँ, वो भक्ति सामर सिंधु में क्या लिखा है, जब तक दीक्षा नहीं तब तक आपकी सेवा भगवान के साथ नहीं, आपकी सेवा भगवान को नहीं मिलती है, लिखा है, याद है किसी को? एक लाइन लिखी है पूरी प्रभुपाद के। तो यहां लिखा क्या है भगवान के, तो गुरु क्या करता है, कौन सा संबंध गुरु हमारा भगवान के साथ स्थापित करते हैं? हमको क्या कहता है गुरु? दीक्षा लेते तो नाम के पीछे क्या लगाते हैं? इसका मतलब आप सेवक को भगवान स्वामी है, ये हुआ संबंध। गुरु हमारा संबंध भगवान से कराता है कि आप सेवक हो भगवान स्वामी है, और तभी हुआ। और फिर प्रभुपाद सावधान करते हैं कि भले भगवान का प्रतिनिधि आपको भगवान के संबंध स्थापित कराए, परंतु उसमें एक मूर्खता नहीं होनी चाहिए। वो कौन सी? क्या लिखा है देखो, क्या पढ़िए, किताब नहीं लाया गया? परंतु अगर उसने कहा कि मैं भगवान हूं, अपने आप को कभी भगवान नहीं कहेगा, पहली बात तो ये है, परंतु उसको भगवान के समान समान दिया जाता है। और ये जब कहें तब क्या कहें, कौन सा श्लोक कहेंगे? साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र युक्त भावेशन। फिर क्या लिखा है इसके बाद? किंतु। किंतु का क्या अर्थ है? किंतु का मतलब परंतु हो गया, इसका मतलब ये ठीक नहीं है। भले सब शास्त्र कहते गुरु भगवान के समान है, क्योंकि भगवान, क्योंकि किंतु प्रभु ने प्रिय, भगवान को प्रिय है, इसलिए भगवान के समान है कि भगवान भगवान नहीं है, भगवान को प्रिय है। ये एक बात हम सिखाते हैं प्रायः, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज अच्छी तरह से समझाते थे। गुरु भगवान में किस बात में समान है? क्या लिखा है प्रभुपाद जी के नाम के ऊपर हिंदी में किताब में? कृष्ण कृपा मूर्ति। गुरु कृष्ण के समान है कृपा करने में, और उस कृष्ण से भी महान है कृपा करने में। परंतु गुरु कृष्ण के समान रासलीला करने के लिए नहीं है, सृष्टि नहीं करता है, परंतु कृपा करने में समान है। और समान नहीं, महान है। भगवान इतनी कृपा नहीं करता है जितनी भगवान का भक्त कृपा करता है। यह मुख्य बात है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, हमको भगवान और जीव में जो अंतर है उसको समझना चाहिए। और प्रभुपाद देखो 2:12 की बात लाए, ये बहुवचन के कारण 2:12 की बात लाए कि सारे व्यक्ति हैं, व्यक्ति रहेंगे, इनका अस्तित्व अलग अलग रहेगा। पहले व्यक्ति थे, अब व्यक्ति हैं, भविष्य में व्यक्ति रहेंगे। अब एक दिया है आपके लिए उदाहरण, बरसात आकाश से पड़े, बरसात जब पड़ती है तो कितनी हरियाली होती है, सब अलग अलग प्रकार के घास होते हैं, जिसका जैसा बीज होगा वैसे उग जाता है। बरसात हुई और सब बीज अपने आप उग गए। ऐसा लिखने का मतलब है जीव अनंत है, उसके कर्म अनंत है, जिसका जो जैसा कर्म है ऐसी जुड़ी हो जाएगी। भाई रात को बरसात पड़ती है तो जो घास उगता है अलग अलग कैसे उगता है? भाई जो बीज होगा धरती में पहले से वही उगेगा ना। तो जीव का जो कर्म पहले होगा वो जब सृष्टि होगी तो वैसे उगेगा, तो रहेंगे फिर भी अलग अलग। भाई सब तो रात को बरसात सब घास एक जैसा क्यों नहीं होता, अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि सब व्यक्ति हैं, सबका बीज अलग है। जैसे सब घास का बीज अलग है, ऐसे सब प्राणियों का अंतःकरण अलग है। अंतःकरण मतलब सूक्ष्म शरीर अलग है, भावनाएं अलग है, इसलिए अलग अलग जुड़ी मिलती है। अब प्रभुपाद जी एक लाइन लिख रहे हैं, ये ध्यान से पढ़ के देखिए, हिंदी में अगर सही है तो हिंदी की ट्रांसलेशन सही है। ये रात का लिखा, बरसात की रात आ गई और रात है ना, रात है सुबह दिन हो गया, बरसात नहीं लिखा, या दिन हो गया। और यहाँ बरसात का उदाहरण नहीं दिया, यहाँ लिखा है रात में अंधकार में कुछ नहीं होता है, दिन होती है तो सब चीजें दिखती है, घर दिखती है, आदमी दिखता है, सब कुछ दिखता है। यहाँ ये उदाहरण दिया है। इसके बाद जो लिखा है वो महत्वपूर्ण है, क्या है? क्या है? इसके बाद एक लाइन है, आइडेंटिटी एंड इंडिविजुअलिटी इन स्पिरिचुअल लाइफ इज रियल नॉलेज। क्या लिखा है? वैष्टि, एक वैष्टि लिखा है, उसका मतलब एक वैष्टि और नहीं, देखो ये है समेष्टि और वैष्टि, दो शब्द हैं। समेष्टि का मतलब सब, वैष्टि का मतलब एक। जैसे मैं उदाहरण दूं, भगवान श्री कृष्ण है समेष्टि गुरु, सबके गुरु है, जगत गुरु है। और मेरा गुरु आपका गुरु वैष्टि गुरु है, व्यक्तिगत गुरु है। भगवान सबका गुरु है समेष्टि गुरु, मेरा गुरु व्यक्ति व्यक्तिगत है, ये वैष्टि गुरु हुआ। तो ऐसे एक तो वैष्टि मतलब व्यक्ति, और दूसरा समझना इन आइडेंटिटी विथ इंडिविजुअलिटी, हमारी पहचान वैश्विक व्यक्ति के रूप में, हम अलग व्यक्ति हैं, हमारा अपना अस्तित्व है। हम इसका भाव यह है कि हम निराकार नहीं, इसका अर्थ है कि व्यष्टि व्यष्टि व्यक्ति। आध्यात्मिकता में प्रभुपाद जी का 2:12 का कहकर ये कहना, और यहाँ यशा और येशाम और तेषाम कहना, इसका अर्थ है कि आध्यात्मिकता का वास्तविक ज्ञान वो है जिसमें व्यक्ति का अस्तित्व रहता है, वो कभी अपने अस्तित्व को खोता नहीं है, खत्म नहीं हो जाता है। जैसा शरीर कैसा भी मिले उसका व्यक्तित्व रहेगा, आध्यात्मिक व्यक्तित्व रहेगा। इसका मतलब जीवात्मा का अपना एक स्वरूप है, वो निराकार नहीं है, इसका अर्थ ये है। ठीक है, अब हम 17 से 26 तक चौथा विभाग है कि मुक्ति के लिए परमात्मा को जानना पड़ेगा। मुक्ति तब होगी जब परमात्मा को जानेंगे, अथवा परमात्मा के ऊपर हमारा विचार केंद्रित करेंगे तभी मुक्ति होगी। यह है 17 से 26 तक का विभाग। इसका अर्थ है कि इसके अब परमात्मा का वर्णन आ रहा है, क्योंकि मुक्ति कैसे होगी, सिर्फ आत्मा को जान से नहीं हो सकती है, शरीर से आत्मा अलग है मुक्ति नहीं हो सकती, परमात्मा को जानना जरूरी है। तो यह श्लोक मैं पढ़ना जा रहा हूं, पहले 17। तद्बुद्ध्यस्तदात्मानस् तन्निष्ठा तत्प्रायणाः गच्छन्त्या पुनरावृतम् ज्ञान निर्धुत कल्मषाः। इसमें जितने तद शब्द हैं, तद हो या तत् हो या तन हो, ये चारों है ना, इसका अर्थ है परमात्मा, इसका अर्थ है भगवान। इसको तत् पदार्थ त्वम पदार्थ, ये ज्ञानियों का लक्षण है। तत् तत् का मतलब वो भगवान, त्वम का मतलब तुम जीव। तो ये तत् जो चारों तत् किसके लिए है, परमात्मा के लिए है, भगवान के। तत् बुद्ध्यास मतलब बुद्धि उसमें लगे, परमात्मा में लगे। हाँ, बुद्धिया तत् बुद्धिया मतलब बुद्धि परमात्मा के लगे। तत् आत्मनस मन उसमें लगे। तद निष्ठा, ये निष्ठा शब्द आपने एक श्लोक पढ़ा है, हमें पढ़ा, श्रद्धा शब्द है, सदृढ़ निष्ठा है ना, तो निष्ठा को प्रभुपाद ने लिखा है श्रद्धा, क्यों श्रद्धा से मिला हुआ है। और निष्ठा को अन्य आचार्यों ने लिखा है तीनों गुणों से ऊपर का स्तर, निष्ठा उसको निष्ठा लिखा है जो निष्ठा के स्तर पे ऊपर भक्त पहुंच गया। और तत्प्रायण मतलब जो भगवान का शरणागत है, प्रायण का मतलब शरण लेना, या जिसके जीवन का लक्ष्य भगवान है। ये चार चीजें हो गई ना, चारों में तत् क्या है, ये श्लोक में तत् के सामने लिखो ये परमात्मा भगवान, ये तत् का मतलब भगवान। अब जिसने चार काम कर लिए, बुद्धि भगवान में लगाई, मन भगवान में लगाया, विश्वास भगवान के ऊपर किया, और भगवान का शरण लिया, सामान्य शब्दों में गच्छन्ति अपनर, वो कहां जाएगा, जहां जाएगा वहां से कभी वापस नहीं आएगा। अपुनर आवर्तम, अपुनर आवर्तम का मतलब वापस नहीं आएगा। क्यों क्यों वापस नहीं आएगा, उत्तर क्या है, ज्ञान निर्धुत कलमश, ज्ञान से सारे कलमश धुल गए। अब इस ऐसे श्लोक आपको समझाना आना चाहिए, श्लोक पढ़ो तो उसमें प्रश्न उत्तर है। देखो पहले चार चीजों का शब्द आ रहा है, तद का शब्द निकाल दिया, तत् का अर्थ आ गया, तो बाकी बुद्धि आत्मा मन है, निष्ठा श्रद्धा है, और प्रायण शरणागत है, जो भी है हा? जो ऐसे करेगा वो ऐसी जगह जाएगा जहां से वापस नहीं आएगा, भगवान के धाम जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ज्ञान ने उसके सारे कलमश को धो दिया है, अब कोई पाप नहीं रहा, इच्छा शुद्ध हो गई, हृदय चेतो दर्पण हो गया, ऐसे जो भी कहो। तो ये श्लोक समझ में आया। अब तद बुद्धिस्तत आत्मदत का मतलब जिसका बुद्धि और मन, और तद निष्ठा का मतलब उसकी श्रद्धा किसके ऊपर है, परमात्मा के ऊपर है, कृष्ण के ऊपर है हमारी भाषा में। ठीक है, जो भगवान के श्रवण की महिमा गा रहे हैं, प्रायण का मतलब लिखे भगवान की जो महिमा गा रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, वो जाएंगे जहाँ से, वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उनका जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं जाएंगे, क्योंकि अज्ञान नाश हो गया, कलमश नाश हो गया, मतलब अज्ञान नाश हो गया, जो जड़ था सबके बंधन की वो चला गया। ये भाव है चक्रवर्ती पाद का। और बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, जिसकी बुद्धि मेरे गुणों में, भगवान कहते हैं मेरे गुणों में, बुद्धि क्या करेगी, मेरे गुणों में के विषय में अब विश्वास हो गया। कौन से गुण के विषय में, मैं किसी से अन्याय नहीं करता हूं, मैं किसी के पाप गुण को नहीं जानता, जो आगे पढ़ के आया ना, ऐसे जिसकी बुद्धि ने निश्चय कर लिया कि भगवान किसी से पक्षपात नहीं करते, उसके भगवान के गुणों में जिसकी बुद्धि स्थित हो गई है, और जिसके मन ऐसे भगवान के गुणों में ही रमे रहते हैं, और लिखते हैं परमात्मा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है, निष्ठा का मतलब परमात्मा को पाना ही जीवन का लक्ष्य है, ये श्रद्धा निष्ठा बना रही है उसने, और जो भगवान का शरणागत है, तत्पर का मतलब शरणागत है, उसका अज्ञान नाश हो गया है ज्ञान से, वो जहां जाएगा वापस नहीं आएगा, मतलब मुक्त हो जाएगा। जब विद्या आएगी तो ज्ञान में, ज्ञान विद्या, अब प्रश्न उठाते हैं, विद्या से ज्ञान प्राप्त होगा जीवात्मा का, परमात्मा का तो नहीं होगा ना, चक्रवर्ती कहते हैं। भगवान कहते हैं केवल भक्ति के द्वारा मुझे पाया जा सकता है, भक्त्या माम ग्रहया, ये भागवत में भक्त्या, भक्त्या हम एकया ग्रहया, केवल भक्ति से ही मुझे पाया जा सकता है। तो फिर ज्ञानी जब तक भक्ति नहीं करेंगे तब तक कैसे भगवान को पाएंगे, तो परमात्मा का ज्ञान, ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए, परमात्मा की भक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए ज्ञानी के लिए, हाँ, बिना ज्ञान के, बिना परमात्मा के जानने के, भक्ति के ज्ञानी मुक्त नहीं हो सकता। इससे ऐसे लगता है कि आत्मज्ञान से मुक्ति नहीं होगी जब तक भक्ति नहीं हो सकती, भक्ति के बिना आत्मज्ञानी मुक्त नहीं हो सकता, इसका अर्थ ये, इसका मतलब परमात्मा की अनुभूति आवश्यक है, ये है इस श्लोक का उद्देश्य, ये इस श्लोक का मुख्य उद्देश्य है। चक्रवर्ती पाद कहते हैं, क्योंकि पहले कह दिया ज्ञान हो गया तो सब पाप नाश हो गए, ये हो गया, परंतु जब तक परमात्मा का पता नहीं है तब तक मुक्ति नहीं है, केवल आत्मज्ञान मुक्ति नहीं दे सकता है, इसलिए ये श्लोक परमात्मा को, अब यहां से परमात्मा का प्रसंग शुरू हो रहा है। अब तत् कहते हैं परम पुरुष भगवान को, जिस के, ये तो कहते हैं आपको समझाने के लिए, तत् किसको कह रहे हैं, बोला पंद्रहवें श्लोक में जिसको विभू कह रहे हैं ना, उसी को तत् कह रहे हैं। आप इस तत् के लिए लिखो, जो विभू है पंद्रह श्लोक में वही तत् है। हाँ, विभू कौन था, जो किसी के पाप पुण्य में नहीं है, क्योंकि बात हो रही है ना दो व्यक्ति में, तो जो पहले श्लोक में है वो तत् है ना, तो विभू है वो तत् है। ये तत् क्या है, पंद्रह श्लोक का विभू ही तत् है, और विभू क्या करता है, हमने उसमें भगवान है, किसी का पाप पुण्य है नहीं है, अपने आप में स्वतंत्र है, विभू की परिभाषा तो हम पढ़ के आए। एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि आगे लिखा है कि भक्ति से ही मुझे प्राप्त हो सकता है, ये 18 अध्याय के 55 श्लोक में है, भक्तिया माम अभिजानन्ति। एक बात चक्रवर्ती पाद बड़ी अच्छी लिख रहे हैं कि ज्ञानी को भागवत में लिखा है 11वें स्कंद में, ज्ञानी को भगवान को अगर पाना है तो ज्ञान को छोड़ना पड़ेगा। ये भागवत का श्लोक है, क्या लिखा है श्लोक में, इस श्लोक में लिखा है, हाँ, ज्ञानम च मई सन्यस्येत, 11:19:1, मेरा विषय में जो ज्ञान है उसका भी सन्यास करोगे तब मुझे पाओगे। तो ज्ञान सतोगुण का है, उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति तीनों गुणों से परे है, तो ज्ञान को भी छोड़ना पड़ता है। अब हम बलदेव विद्याभूषण की बात को प्रभुपाद जी की कथा पे आते सीधे। प्रभुपाद जी तत्व की परिभाषा के लिए सारा तात्पर्य लिखा है पहले, जो तत् शब्द है ना, विभु है ना, उसकी परिभाषा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं हमारे लिए। भगवान श्री कृष्ण परम दिव्य सत्य है। ये किसके लिए लिखा है, क्यों लिखा है? कोई पूछे आपसे कि आप पढ़ाने आ रहे हो, ऊपर कहीं कृष्ण का नाम नहीं है, ये क्यों लिखा है आपके गुरु जी ने, तो क्या कहोगे? तत् शब्द की परिभाषा है, ठीक है ना। अब प्रभुपाद जी कहते सारी भगवत गीता का केंद्र है भगवान श्री कृष्ण, परम पुरुष भगवान है, इसी की घोषणा की गई है सारी गीता में। लिखा है, क्या लिखा है? सारी गीता का केंद्र बिंदु है कि श्री कृष्ण ही परम पुरुष भगवान है। अब ये तत्व की परिभाषा चल रही है। और प्रभुपाद जी केवल भगवत गीता नहीं, फिर प्रभुपाद जी कहते हैं और भी जितना वैदिक साहित्य है उसका भी यही अभिमत है। अब पर तत्व क्या है? अब प्रभुपाद जी इतना कह के फिर पर तत्व की बात कर रहे हैं। पर तत्व क्या है? परम सत्य क्या है? भगवान को ब्रह्म परमात्मा और भगवान के विषय में जाना जाए, परंतु भगवान इसमें परिपूर्णता है। हाँ, भगवान इसमें परिपूर्ण है, दो वो अधूरे हैं। और प्रभुपाद जी फिर तत्व के लिए भगवान सब कुछ है, ब्रह्म और परमात्मा से ऊपर है, उसके लिए भगवत गीता का श्लोक कौन सा दे रहे हैं? मत परतरम न किंचित अस्ति धनंजय मई सर्वमिदम प्रोता सूत्रे मणिगणा इव, ठीक है। सूत्र, सूत्र का क्या अर्थ है? मणिगणा इव, जैसे सूत्र धागा नहीं दिखता है, मणि दिखते हैं, ऐसे भगवान नहीं दिखता है, दुनिया दिखती है, लेकिन दुनिया सारी भगवान पे टिकी हुई है। अब प्रभुपाद जी भगवत गीता से लिखते हैं कि जिसको ब्रह्म मानते हैं ज्ञानी, वो भी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर स्थित है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ठीक है। अब प्रभुपाद जी तत् शब्द को क्या हमारे विचार में, हमारे बुद्धि में क्या डालना चाहते हैं? तत् परम भगवान श्री कृष्ण है। अभी तक जो लिखा है ना, ये सिर्फ एक बात प्रभुपाद ने हमको सिखाई है कि जो तत् शब्द श्लोक में वो श्री कृष्ण है, ठीक है। अब बाकी शब्दों को, जो रेस शेष शब्दों को अभी समझा रहे हैं कि मन बुद्धि श्रद्धा और शरण, ये चार शब्दों का अर्थ है। बुद्धि, आत्मा, निष्ठा और प्रायण, इन चार शब्दों का अर्थ सीधा यहां आ रहा है कि नहीं आया? ऐसे कहा इस श्लोक से, ये सब कृष्ण के ऊपर होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना निश्चित रूप से निस्संदेह सारे कलमश को धो के साफ कर दे, और दिव्यता की सब चीजों को पूर्ण रूप से प्रकाशित कर देगी। तो ये किसका अर्थ लिखा है श्लोक में? ज्ञान निर्धुत कलमश, ठीक है। अब कृष्ण भावना भावित व्यक्ति एक बात को समझता है, क्या समझता है? अच्छी तरह से समझता है कृष्ण में क्या है? द्वैत है। ओए राम राम, झगड़ा करेंगे लोग, द्वैत है। हाँ है, द्वैत है। क्या है द्वैत? वो एक व्यक्ति भी है और साइमल्टेनियस आइडेंटिटी एंड इंडिविजुअलिटी। लिखा क्या है यहाँ? अंग्रेजी में एकता भिन्नता शब्द नहीं है, ये वही शब्द है जो वहां लिखा था। आध्यात्मिकता में इंडिविजुअलिटी विथ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी विथ इंडिविजुअलिटी। देखो ये आइडेंटिटी और इंडिविजुअल में क्या अर्थ, अंतर क्या है? देखो आप सब व्यक्ति हो भाई, आप सब ब्रह्मचारी हो, ये हो गई आपकी आइडेंटिटी। परंतु ये इंडिविजुअल कौन है, नाम क्या है इसका? ये परमात्मा है, वो धर्मात्मा है, आया ही नहीं है ना, धर्मात्मा नहीं आया। अब आप देख लो कि इंडिविजुअलिटी में अंतर और आइडेंटिटी में अंतर हुआ कि नहीं। आइडेंटिटी सबकी ये है कि इंसान है, पर इंडिविजुअलिटी ये है कि ये प्रेसिडेंट है, ये प्राइम मिनिस्टर है। आइडेंटिटी है ये कि सब भक्त हैं, पर इंडिविजुअलिटी ये है कि ये इसमें विशेष है। तो कृष्ण व्यक्ति तो है परंतु विशेष व्यक्ति है, उनके जैसा और कोई नहीं है। वो बांसुरी वाला, अब कितने फोटो यहाँ लगे हुए हैं, कृष्ण का फोटो, राम का फोटो अलग क्यों समझते हैं, नरसिंह का अलग, विष्णु अलग क्यों समझते हैं? भाई सारे विष्णु है ना, तो अलग क्यों समझते हैं? तो इंडिविजुअलिटी भी अलग है और आइडेंटिटी भी अलग है, तो दो शब्दों को कैसे समझेंगे? हिंदी में लिखा ही नहीं है, ये उसकी बुद्धि में ही नहीं आया है ना। ऐसे ऐसे लिखेंगे तो गड़बड़, ये अचिंत्य भेद अभेद तत्व हो जाएगा। लेकिन प्रभुपाद ने लिखा बहुत बड़ा, अंग्रेजी में लिखा है, साइमल्टेनियसली आइडेंटिटी एंड इंडिविजुअलिटी, एक साथ में व्यक्ति भी है और विशेष भी है। बहुत अद्भुत शब्द है, शब्द लिखे हैं। और सामान्य ये कहे कि वो निराकार है साकार है, ऐसे इसका अर्थ भी निकल सकता है, लेकिन प्रभुपाद ने ये नहीं लिखा है, ये नहीं लिखा है प्रभुपाद ने, ये बहुत बड़ी बात है। तो कृष्ण क्या है? कृष्ण भावना व्यक्ति भावित व्यक्ति अच्छी तरह से समझता है कि कृष्ण में द्वैत है। हरे राम, क्या द्वैत है? कि एक समय में वो विष्णु तत्व भी है, परंतु उससे भिन्न श्री कृष्ण स्वयं श्याम सुंदर भी है, क्योंकि उसी को विष्णु भी कहते हैं, उसी सब उसी से तो निकले हैं। इसका भाव ये है कि कृष्ण भावना व्यक्ति सब कृष्ण के अवतार जितने हैं उनको भी सम्मान देते हैं, वो भी व्यक्ति हैं सारे, राम भी है, नरसिंह है, ये सब व्यक्ति हैं, परंतु कृष्ण से उन सबसे अलग, उसका अपना व्यक्तित्व अलग है। तो ये शब्द अंग्रेजी में लिखा है, इसका हिंदी में अनुवाद नहीं हुआ। यह हमारा ये श्लोक पूरा होता है, टाइम भी पूरा होता है। 18वां श्लोक तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा, विद्या विन्यास संपने ब्रह्मणी गवि हस्तने सुनिचय स्वपाके पंडिता समदर्शना। ये है समदर्शी पंडित, जिसने विद्या, विद्या का मतलब जिसके अज्ञान चला गया, तो विद्या से विनय का क्या अर्थ है? निम्रता आई, विद्या से आई निम्रता, उसमें विद्या, वो अभी नम्रता से संपन्न है। वो ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को और कुत्ते को, और कुत्ते खाने वाले को, तो इसमें दो है विभाग। जैसे कुत्ता खाने वाला भी इंसान है, ब्राह्मण भी इंसान है, इसका अर्थ है वर्ण आश्रम का भेद नहीं जानता है। ये तो वर्ण आश्रम का भेद हो गया ना, कि नीच जाति का उच्च जाति का ऐसे नहीं कहता है। और कुत्ता हाथी गाय ये सब है पशु जातियां, तो ये हैं जातियां, इनमें भेद नहीं है। और एक दूसरी दृष्टि से देखा जाए, गाय और ब्राह्मण सत्वगुण में है, हाथी रजोगुण में है, कुत्ता और कुत्ता खाने वाला तमोगुण में, परंतु इनके प्रति भी कोई भेद नहीं है। ये इसके तीन प्रकार का इसका विभाजन किया है, आप समझे, इसका विभाजन समझे भाई। कुत्ता खाने वाला भी इंसान है, ब्राह्मण भी इंसान है, वो समझता है दोनों के अंदर परमात्मा को देखता है, एक ही परमात्मा है, आत्मा भी तो एक जैसा ही है, परमात्मा भी एक जैसा है, उसको आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो गया है, इसलिए वो सबके अंदर ऊंच नीच नहीं देखता है, न जाति में ऊंच नीच देखता है, न वर्णों में ऊंच नीच देखता है। वे जाति कहते हैं कि पशु जाति, पक्षी जाति, इसको जाति कहते हैं, ऊंच नीच वर्ण में कहती है, तो ये नहीं देखता है, ये है सच्चा ज्ञानी। तो इसका मतलब जो पहले श्लोक कहा गया, जिसका सारा अज्ञान नाश हो गया है वो कैसा होगा, बोला ऐसा होगा, उसके ये है लक्षण, ये उसके लक्षण है कि उसकी दृष्टि ऐसी होगी। चलो इससे आगे फिर अगली बार करेंगे। हमें समय ज्यादा लगता है लेकिन ठीक है, इसके बाद इसके लक्षण आएंगे। जिस क्या प्रश्न, क्या प्रश्न है? हाँ क्या है?